नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, समाधान में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, इतिहास गवाह है कि पवित्रता ने बहुत श्रेष्ठता प्रदान की है मनुष्य आत्माओं को, लेकिन पवित्रता की कमी, काम विकार के प्रभाव ने बड़े बड़े सिंहासनों को हिला दिया, बड़े बड़े साम्राज्य इससे नष्ट हो गए। पृथ्वीराज चौहान की बात आप सभी जानते हैं, राणा भीमदेव की बात आप जानते हैं। यदि इनके जीवन में कहीं ना कहीं विकार का अभाव होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और होता। चाहे नेपोलियन बोनापार्ट थे, चाहे हिटलर थे, चाहे अन्य शासकों की ओर यदि आप ध्यान दें, उनके पतन की ओर आप ध्यान दें, तो कहीं ना कहीं उसका बीज उनकी अपवित्रता, उनका काम विकार ही देखने में आता है। आज भी ये मनुष्य को दलदल की ओर धकेल रहा है, उसके जीवन को दुखी बना रहा है, अशांत बना रहा है, समाज में बिल्कुल ही अनैतिकता का प्रचार और प्रसार कर रहा है। ऐसे में हम सबका दायित्व तो अवश्य बन जाता है कि हम पवित्रता को, ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में धारण करें और इसका प्रकाश सारे संसार में फैलाएं। इसीलिए लगातार हम इसकी चर्चा कर रहे हैं और आदरणीय भ्राता जी, भ्राता सूर्य जी, हम सबको इसका बहुत सुंदर प्रकाश प्रदान कर रहे हैं हमारे अंदर का, ताकि जो अंधकार है वो दूर हो सके। इस प्रकाश को और हम अपने अंतर में भरेंगे आदरणीय भ्राता जी के साथ। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत 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 स्वागत है।
शुक्रिया।
बहुत सुंदर प्रतिक्रियाएं भ्राता जी आप देख रहे हैं, पिछले कई एपिसोड से हमें प्राप्त हो रहे हैं, लोगों के प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं, मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे एक संशय के जो बादल हैं वो छटते चले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके अंतर में ये जागृति आ रही है कि हम भी शायद ये कर सकते हैं। जो आज तक आध्यात्म पथ के पथिकों के लिए ही था, अब वो समाज के अन्य लोग भी धारण करने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं।
बहुत अच्छी बात है। यही तो इस कार्य की संपूर्ण रूप से सफलता होगी, क्योंकि परमात्मा की प्रेरणा ही ये है। तो मैं तो ये देख रहा हूं कि अनेक लोगों में पवित्रता के बीज अंकुरित हो रहे हैं
जी।
बिल्कुल, मैं ये बात देखकर कभी कभी बहुत सरप्राइज भी होता हूं कि ये कैसे हो रहा है। अनेक लोग, युवक, दो चार पांच साल ग्रस्त में रहने के बाद उनके अंदर पवित्रता की तीव्र प्रेरणा आ रही है। तो मुझे लगता है इसके पीछे कहीं ना कहीं परमात्म प्रेरणा अवश्य काम कर रही है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगले 10 साल में इस वसुंधरा पर पवित्रता की एक बहुत जोरदार क्रांति स्थापित हो जाएगी।
जी आमीन, ऐसा ही हो हाँ, तो कितना सुंदर होगा। भ्राता जी, मैं प्रश्नों की ओर आ रहा हूँ। ये प्रश्न भ्राता जी हमें भेजा है प्रकाश सिंह राजपूत, लिखते हैं कोटा से, और ये कहते हैं, मुझे बचपन से ही ब्रह्मचर्य बहुत प्रिय है। मैं भी स्वामी दयानंद जी व स्वामी विवेकानंद जी की तरह पवित्र रहकर अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे माता पिता व सगे संबंधी जबरदस्ती मेरा विवाह कराना चाहते हैं। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए?
इनकी समस्या तो सचमुच ज्वलंत है ही, और ये समस्या अनेक युवक और युवतियों के सामने आती है, क्योंकि समाज की व्यवस्था वही है। माँ बाप भी अपने बच्चों की शादी करा के कर्ज मुक्त, अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाना चाहते हैं। वो सोचते हैं फिर इनका भाग्य, इनका जीवन, ये जाने, हमारा कार्य एक बार हो गया, हम तो निश्चिंत हो जाएं। समाज कुछ कहता है, विशेषकर कन्याओं के केसेज में समाज की बहुत सुननी पड़ती है।
और वैसे कन्यादान की भी प्रथा इसीलिए शायद चली आई है कि हमें कन्याओं का
दान कर देना है। लेकिन मैं इसको कहूंगा कि अगर आपको पवित्र रहना ही है, अगर आपको अपने देश के कल्याण के लिए कुछ करना है, अगर आपको रेप जैसी बदनाम करने वाली चीजों को भारत भूमि से नष्ट करना है, एक बहुत महान कार्य की ओर प्रवृत्त होना है, तो आपको अपने में बहुत दृढ़ता, बहुत आत्मविश्वास, बहुत साहस लाना ही पड़ेगा। माँ बाप को भी आपको कन्विंस करना पड़ेगा, उन्हें समझा देना पड़ेगा कि मैं समाज से विमुख नहीं हो रहा हूं, बल्कि एक महान कार्य के लिए, परमात्मा की आज्ञा का पालन करने के लिए, इस संसार को पवित्रता का दान देने के लिए मैं ये पवित्र मार्ग अपनाना चाहता हूं। और पवित्रता तो सचमुच पूजनीय है, तो ऐसी कोई बात नहीं कि माँ बाप इससे सहमत नहीं होंगे। तो बहुत अच्छी तरह आत्मविश्वास के साथ यदि अपने माँ बाप को कन्विंस किया जाएगा तो बिल्कुल वो इसमें पूरा सहयोग देंगे। लेकिन दूसरी बात भी मैं सबके लिए कहूं कि अगर कहीं समाज आपको सहयोग नहीं देता, स्वामी दयानंद को भी तो उसके पिता ने काफी रोका, उसका विवाह ही तो कर रहे
उनको
थे
भागना
जब
पड़ा।
वो भागने भाग गए। बहुत केसेज ऐसे हैं जो महान पुरुष हुए हैं जिनकी आज समाज में पूजा होती है, मान्यता होती है, वो कहीं ना कहीं भाग कर ही गए थे और पवित्रता को अपनाया था। लोग हंसी में कहा करते हैं कि जब घोड़े पे चढ़ाते हैं ना वर को
जी।
तो हंसी करते हैं कि कहते हैं लास्ट चांस है, भागना हो तो भाग जाओ।
जी।
तो वो वास्तव में ये अपने ऊपर है, अगर हमारे अंदर अच्छी विल है, विल है तो विजय हमारी ही होगी और पवित्रता बनने वालों को कोई रोक भी नहीं सकता।
जी, और ये बात बहुत अच्छी लगी लेकिन ब्रदर जी कि जिस उम्र में आज जो एक बयार चल रही है, एक हवा चल रही है जिसमें ज्यादातर युवक एक विवाह के बारे में ही सोचते रहते हैं, इनके मन में एक बहुत सुंदर एक बात है कि मैं पवित्र रहकर देश की सेवा करूं और एक नई चीज शुरुआत करूं।
बिल्कुल,
बहुत सुंदर।
मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा और मैं तो युवकों को ये कहा करता हूं कि हजारों लाखों युवक गलत काम करने के लिए मां बाप की अवज्ञा कर रहे हैं, उनको रोता छोड़कर सुसाइड कर लेते हैं, उनकी बात न मानकर किसी को भी लेके भाग जाते हैं। विवाह करना, नियमबद्ध होकर करना, एक अरेंज्ड मैरिज करना, वो तो अच्छी बात है, लेकिन किसी के साथ भी निकल जाना, भाग जाना, उसमें मां बाप की भी बदनामी हो रही, समाज की बदनामी हो रही। तो जब बहुत सारे हजारों युवक पाप कर्म करने में किसी से डर नहीं रहे हैं, किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, तो तुम पवित्र जीवन बनाने में, तुम देश सेवा करने में, तुम भगवान की आज्ञा का पालन करने में किसी के अधीन क्यों होते हो? फिर उठो और इन सब बंधनों को तोड़कर प्योरिटी को धारण करो और संसार को दिखाओ कि पवित्रता के मार्ग पर चलना कितना सहज हो सकता है।
जी, बहुत सुंदर ब्रदर जी। ब्रदर जी, मैं अगले प्रश्न की ओर आ रहा हूं। ये हमें भेजा है आदित्य सोनी जी ने इंदौर मध्य प्रदेश से, और ये कहते हैं कि मैं प्रारंभ से ही आपका कार्यक्रम समाधान देख रहा हूं। अभी आपने बलात्कार व अन्य सामाजिक समस्याओं के निदान के लिए जो पवित्रता व ब्रह्मचर्य का मुद्दा उठाया है वह सचमुच बहुत साहसिक है। आप हमारी पुरातन भारतीय संस्कृति की ओर सभी को ले चल रहे हैं, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। कृपया इस विषय पर विस्तार से अवश्य प्रकाश डालें कि अपनी पवित्रता की रक्षा किस प्रकार की जाए, ऐसे में जबकि चारों ओर का वातावरण बहुत दूषित व तामसिक है।
हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है, क्योंकि जो लोग पवित्रता के मार्ग पर चलते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये गंदगी, बाहर की चीजें, फिल्मों में गंदगी, मूवीज में गंदगी, टीवी पर गंदगी, इंटरनेट में गंदगी, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी बाधा बनती ही है। तो इसके लिए स्वयं को थोड़ा सा समय देकर, एकांतवास करके अपने को कुछ चीजों में बार बार दृढ़ करना आवश्यक है। जैसे ये देह क्या है, मैं जब शुरू में पवित्रता का बहुत अच्छा अभ्यास किया तो मैं सोचा करता था, एक जगह मैंने एक डस्टबिन देखा जो अभी नया नया एक गार्डन बना था, उसमें एक डस्टबिन किसी पक्षी के रूप में बनाया हुआ था, हमें पता नहीं था ये डस्टबिन है, बाहर से सुंदर पेंट किया हुआ था और वो लगता बहुत सुंदर पक्षी बनाया हुआ। हम तो खींचते खींचते उसके पास चले गए, जाके देखा है तो डस्टबिन है। तो मेरे अंदर तुरंत विचार आया, मैंने अपने साथियों को भी कहा कि देखो ये देह भी तो ऐसे ही है, बाहर से सजा सजाया है, और अगर हम बाहर की खाल थोड़ी सी हटा दें तो अंदर गंदगी के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो हम आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करेंगे, पहली जो चीज है जिससे हमारी प्योरिटी नेचुरल होगी और जिससे ये बाह्य वातावरण की गंदगी है, निगेटिविटी हमारे चारों ओर है, इम्प्योर वाइब्रेशंस हैं, कामुक वाइब्रेशंस चारों ओर फैल गए हैं, प्रकृति भी दूषित हो गई है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है कि इससे स्वयं को प्रोटेक्ट करना परम आवश्यक है। दूसरी चीज, खान पान पर बहुत ध्यान देना है। जिसको पवित्रता का मार्ग अपनाना है उसका खान पान पूरी तरह सात्विक होना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य भोजन बनाता है, जिस परिवेश में वो भोजन रखा हुआ है, तो ये प्रकृति से प्राप्त भोजन है। प्रकृति वाइब्रेशंस को बहुत जल्दी ग्रहण करती है, इट्स वेरी सेंसिटिव टू द वाइब्रेशंस। तो भोजन बनाने वाले की मनोस्थिति अगर अच्छी नहीं होगी तो खाने वाले पर उसका बुरा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए पवित्र भोजन, सात्विक भोजन, एक पवित्र व्यक्ति के हाथ का बना हुआ भोजन खाने से ये प्योरिटी बिल्कुल सहज हो जाएगी। जिसको पवित्रता का मार्ग अपनाना है उससे ये फिल्म आदि देखने से बिल्कुल परहेज कर लेना चाहिए। टीवी चैनल्स भी आप खोलेंगे तो जब ऐड आते हैं तो गंदगी गंदगी उसमें आती है, और लोगों के पास शायद आजकल रहा ही नहीं अच्छी तरह से प्रचार करना। अगर एक टूथपेस्ट का भी वो दिखा रहे हैं, ऐड दे रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ गंदगी जरूर दिखा देंगे। तो ये एक समाज में विकृति बढ़ाने वाली जो चीजें हमारे चैनल्स दे रहे हैं, पेश कर रहे हैं, इनसे परहेज कर लेना चाहिए। ऐसे टीवीज को, ऐसे चैनल्स को देखना ही बंद कर देना चाहिए। और मैं तो कहूंगा अगर ऐड में गंदगी है तो ऐड कभी देखें ही नहीं, तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे ही गलत साहित्य का अध्ययन, कई आजकल कुछ ऐसी पत्र पत्रिकाएं हैं जिनमें गंदे चित्र ही छपते हैं, और मेरे पास ये ऐसे बहुत सारे केसेज आते हैं कि कोई भी युवक जो पवित्रता अपनाना चाहता था लेकिन वो बार बार इस व्यसन के अधीन हो गया गंदी पत्र पत्रिकाएं देखने के, और उसको बहुत कठिनाई पैदा हो गई। तो ये परहेज तो निश्चित रूप से बहुत आवश्यक है। जब हम एक मार्ग पर चल दिए तो दूसरे मार्ग की बातों को देखना बिल्कुल गलत है। जैसे मान लो हमने पढ़ते हुए कॉलेज में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लिया है, तो हम कभी ये तो नहीं सोचेंगे कि चले हिस्ट्री का पीरियड भी तो अटेंड कराएं, देखें वहां क्या पढ़ाया जा रहा है, कॉमर्स की क्लास में तो देख ले अकाउंट में क्या सिखाया जा रहा है। जिसका जो सब्जेक्ट है वो उस पर ही फोकस करता है ना। तो जिसको पवित्रता अपनानी है, पवित्रता के विरुद्ध जो चीजें संसार में है उसे आंखें भी बंद कर लें, उसे कानों को भी बंद कर लें, ये परम आवश्यक है। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट बात, ऐसे लोगों का संग भी ना करें
जी,
जो इस तरह के गंदी बातें करते हैं, गंदा माहौल पैदा करते हैं, जिनके पास इसके अलावा बातचीत करने के लिए कुछ है ही नहीं, अच्छाइयों से जैसे उनका नाता ही नहीं। तो अच्छा अध्ययन, अच्छा संग, अच्छा श्रवण, अच्छा देखना और इस तरह अच्छाई चिंतन करना, इन सब का यदि ध्यान रखेंगे वो सब युवक विशेष करके जो इस मार्ग को अपना रहे हैं, तो ये मार्ग सचमुच बहुत अच्छा हो जाएगा, आनंदकारी, सहज हो जाएगा।
बिल्कुल, बहुत सुंदर बातें आपने भ्राता जी रखी हैं। जिस लक्ष्य को हम अपना लेते हैं उस लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए यदि मार्ग में कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं जो हमें लक्ष्य से विमुख कर रही हैं, उन चीजों का हमें त्याग कर देना चाहिए, अपनी आंखें और कान बंद कर लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अब जो चीजें चारों तरफ हैं उनका भी आनंद ले लिया जाए। मुझे विवेकानंद जी की बात याद आ रही थी भ्राता जी, उन्होंने कहा था कि अपने लक्ष्य के मार्ग में आने वाली तमाम बातों को विष की भांति, यदि वो अवरोध पैदा कर रही हैं उनका विष की भांति त्याग कर दो, तभी लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। और ब्रह्मचर्य जो एक साधना है, एक जो एक श्रेष्ठ तप है, वहां तक भी यदि हमें पहुंचना है, उसका आनंद लेना है, तो ये कार्य तो हमें अवश्य करना ही होगा, और शायद इसके लिए बहुत दृढ़ता की आवश्यकता।
बिल्कुल, एक सीधी सी कहावत भी होती है कि जिस पेड़ के आम नहीं खाने उसके पत्ते गिनने से क्या फायदा। तो ये बात बिल्कुल सुंदर है जीवन के हर फील्ड के लिए कि जो लक्ष्य हमने बनाया है, चाहे वो किसी भी फील्ड के लिए हमने अपना उत्तम लक्ष्य बनाया हो, उसको प्राप्त करने में जो निगेटिव बातें हैं उनका विस्तुल्य त्याग कर ही देना चाहिए, यही बुद्धिमानी है।
बिल्कुल भ्राता जी, एक चीज मैं विशेष करके पूछना चाहूंगा कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में लाखों विद्यार्थी हैं, लाखों लोग इस विद्यालय से जुड़े हुए हैं, और ये देखा गया है कि वो सहज रूप से ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। उनके चेहरों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये किसी दबाव में आकर, किसी प्रलोभन में आकर के ये कर रहे हैं, ऐसा कतई प्रतीत नहीं होता, बल्कि उन सबके जीवन से, उनके चेहरे से एक आनंद लगता है, तो ऐसा लगता है कि वो ब्रह्मचर्य का आनंद ले रहे हैं। तो ब्रह्मा कुमारी, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, क्या ऐसा सिखा रही हैं जिससे ये ब्रह्मचर्य बहुत सहज हो जाता है और आनंद प्रतीत होने लगता है।
बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है, और इसके बारे में जानना सचमुच बहुत आवश्यक है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी के बारे में समाज में कई तरह के भ्रम भी पैदा हो गए हैं, हो गए थे, अब तो बहुत दूर हो गए, कि ये तो भाई बहन बना देती हैं और ये तो पता नहीं क्या सिखाते हैं, ये तो बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, कोई कुछ भी कह देता है, जबकि यहाँ तो बिगड़ो हो को सुधारा जा रहा है, यहाँ तो पवित्रता की एक सरिता बहाई जा रही है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसे लाखों युवक हैं, युवक और ऐसे लाखों गृहस्थी हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ब्रह्मचर्य को अपना चुके हैं, देखिए सन्यासियों के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि सन्यासियों को सन्यास लेना पड़ा पवित्र रहने के लिए, गृहस्थ का त्याग करना पड़ा, और स्वयं परमपिता ने एक ऐसा सिस्टम चालू कराया कि गृहस्थ में रहते ही बहुत लोग पवित्रता को अपना गए। मेरे पास हजारों उदाहरण हैं जिनको मैं जानता हूं कि स्त्री पुरुष गृहस्थ में रहते हैं लेकिन पवित्र जीवन अपनाए हुए हैं, उनके इस पवित्रता के मार्ग में कोई बाधा नहीं, दोनों ने स्वेच्छा से इसको स्वीकार कर लिया। युवक और युवतियों की तो एक बहुत लंबी संख्या है जिन्होंने सचमुच स्वेच्छा से इस मार्ग को स्वीकार किया, जबरदस्ती नहीं किया, और भगवान को वचन दे दिया कि हम तुम्हारे इस श्रेष्ठ कार्य के लिए पवित्र जीवन बनाकर पवित्रता का दान भी संसार को देंगे और अपने जीवन को भी अब परफेक्ट बनाएंगे। क्योंकि पहला लक्ष्य ये था कि बिना प्योरिटी के हम परफेक्शन को प्राप्त नहीं कर सकते, और ब्रह्मा कुमारी में जो कुछ ज्ञान दिया जाता है वो ईश्वरीय ज्ञान है, वो किसी शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। यद्यपि हम गीता को कोट करते रहते हैं क्योंकि गीता में बहुत अच्छी बातें हैं, वेदों में बहुत अच्छी बातें हैं, परंतु हमारे इस ज्ञान का आधार वो सब नहीं है। ईश्वरीय ज्ञान जो परमात्मा ने स्वयं ब्रह्मा के माध्यम से दिया है वही आधार है, और उन्होंने पहला ही पाठ सिखाया बी प्योर बी योगी, दोनों का एक दूसरे से कनेक्शन है, पवित्र बनो राजयोगी बनो। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की नींव ही पवित्रता है, जो पवित्रता को नहीं अपना रहा वो ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं है। हमारे यहाँ डेली क्लासेज होती हैं सवेरे, जो कहीं 6:30 बजे से प्रारंभ हो जाती हैं, कहीं 5:30 बजे भी सवेरे प्रारंभ हो जाती हैं, कहीं कहीं हमारी सेवा केंद्रों पे वो 5 बजे भी प्रारंभ होती हैं, और बहुत सारे सेवा केंद्रों पर जहाँ लोग थोड़े देर से आते हैं अपना कार्य व्यवहार निपटा कर 7 बजे से प्रारंभ होती है। तो रोज सवेरे सवेरे दो चीजें ब्रह्मा कुमारी जी में सिखाई जाती हैं जिससे जीवन बहुत सहज पवित्र होता है। एक, रोज सवेरे 4 से 4:45 राजयोग मेडिटेशन करना। बहुत यहां आने वाले विद्यार्थी, हम उन्हें विद्यार्थी कहते हैं क्योंकि यहां पढ़ाई है, ये कोई सत्संग नहीं है, ये कोई आश्रम नहीं, यहां कोई भक्ति पूजा पाठ नहीं, यहां स्पिरिचुअल एजुकेशन है। तो सभी विद्यार्थी सवेरे कोई 3:30 बजे उठ जाता है, कोई 3 बजे भी उठते हैं, कोई 4 बजे उठते हैं, और अमृत वेले 1 घंटा 1.25 घंटा बहुत अच्छी तरह राजयोग का अभ्यास करते हैं। उसमें उनको प्रभु मिलन का आनंद होता है, प्रभु मिलन का स्पष्ट अनुभव होता है, वो भगवान से बात कर सकते हैं, इससे उनकी प्योरिटी बहुत बढ़ती है। तो एक सवेरे उठना प्योर वाइब्रेशन है, उस समय प्रकृति की स्वतोप्रधान स्थिति है, उस समय उसका मन पर देह पर बहुत सुंदर असर पड़ता है, उस कारण पवित्रता बहुत ईजी हो गई है। दूसरी चीज है सवेरे सवेरे जैसे मैंने कहा ज्ञान की क्लासेज होती हैं, उसमें रोज सभी को सुंदर विचार मिलते हैं, आत्म जागृति उससे होती है, मनुष्य के मन में उपरांता आती है। तो ये दूसरी चीज है जिससे यहाँ ब्रह्मचर्य बिल्कुल सहज हो जाता है। तीसरी धारणा हमारी है बहुत सुंदर, खान पान बिल्कुल सात्विक। तो अन्न का प्रभाव सीधा मन पर होता है, और पवित्रता अपनाने के लिए पवित्र भोजन की परम आवश्यकता है। इसी तरह जैसे हम इस शक्ति को रूपांतरित करने की बात कर रहे थे, राजयोग का अभ्यास, सेवाओं में बहुत ज्यादा व्यस्त भी लोग रहते हैं, अपने कामकाज में व्यस्त रहते हैं। दूसरा, यहाँ एक और अच्छी चीज सिखाई जाती है कि हम जब एक दूसरे को देखें तो दैहिक दृष्टि से नहीं देखें, सब आत्माएं हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का हो, तो हमारे यहाँ ये भेदभाव किसी के पास भी नहीं है। हम यहाँ इतने लोग एक साथ रहते हैं, हजार तो हम एक साथ यहाँ रहते हैं, किसी को ये पता नहीं कौन किस जाति से है, कौन किस संप्रदाय से है, यहाँ तो सब आत्माएं हैं। तो जब देहभान को छुड़वाया जाता है, जब आत्मिक स्वरूप में सभी को स्थित किया जाता है, तो ये प्योरिटी बहुत ही सहज हो जाती है। इसके अलावा हमारी और बहुत सुंदर साधनाएं हैं जिसमें हम अपने देव स्वरूप को याद करते हैं, यानी हमें ये ईश्वरीय ज्ञान मिल गया कि हम तो लंबा काल देवता थे, उस स्वरूप को याद करते हैं, तो स्वरूप के पवित्र वाइब्रेशंस हमें पवित्र बनने में बहुत मदद करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हम यहाँ पवित्रता जबरदस्ती नहीं पालन करते कि भाई भगवान की आज्ञा पवित्र बनो हमें अपनानी है, लेकिन भगवान ने इसके लिए हमें सूक्ष्म इवन मनोवैज्ञानिक विधि भी बहुत सारी बता दी हैं और ये समझा दिया है जो आज तक कहा गया कि कोई पवित्र रह नहीं सकता, ये तो बड़ा कठिन काम है, ये तो अपनी इच्छाओं को दबाने जैसा है, ये तो अपने को कष्ट देने जैसा है। हमें परमात्म ज्ञान के द्वारा ये पता चल गया कि हमारी तो मूल स्थिति पवित्र है, हम तो हजारों साल पवित्र रहे थे और कल्प कल्प पवित्र बने थे, तो अब भी हमारे लिए पवित्र बनना बहुत सहज है। तो एक साइकोलॉजिकल चेंज भी आ गई और तो सभी ने क्योंकि परमात्म मिलन के अनुभव कर लिए, सामने बैठे हुए भगवान से सुन लिया, बच्चे तुम पवित्र आत्माएं हो, पवित्रता तुम्हारा स्वधर्म है, अब तुम्हें पवित्र बनना है, अब तुम्हें वापिस जाना है मुक्तिधाम को जाना, इसलिए पवित्र बन जाओ। और ये भी उन्होंने बता दिया अगर तुम अब पवित्र नहीं बनोगे तो एक समय विनाश का ऐसा आ रहा है बहुत जल्दी कि वो परिस्थितियां तुम्हें पवित्र बनने के लिए विवश करेंगे, लेकिन तब तुम्हें पवित्रता का सुख नहीं मिलेगा। तो ये सब बातें हैं,
एक संपूर्ण ज्ञान दिया जा रहा है कि क्या है इसकी महत्ता। हाँ। मुझे जो बात समझ में आई वो ये कि इसका महत्व स्पष्ट किया जा रहा है। हाँ। और महत्व के साथ साथ इसे कैसे अपने जीवन में लाया जा सकता है। दिनचर्या की बात आपने बताई कि प्रातःकाल उठ जाते हैं, मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, फिर ज्ञान भी दिया जाता है कि किस प्रकार से इसे अपने जीवन में लाया जाए, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। और आपने ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण कही ब्रता जी कि भोजन पे विशेष करके सात्विक भोजन जो है वो कहीं ना कहीं हमारी इस पवित्रता की धारणा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और लगातार प्रैक्टिस। और एक बात ये भी कि अपने आप को आत्मनिश्चय करना, ये भी शायद इसके मूल में है जो बहुत ज्यादा मदद करता है।
बिल्कुल, बहुत और भी बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि ये टीचिंग्स तो हमें रोज प्राप्त होती हैं
जी।
स्वयं को भी देह से न्यारा फील करना, जिसको बॉडी लैसेस
एक लगातार अभ्यास की शायद आवश्यकता जरूर पड़ती है।
शाम के समय भी बहुत अच्छा योग सभी करते हैं, सोने से पहले भी बहुत अच्छा योग सभी करते हैं
जी।
और ये देखा जा रहा है कि जिनकी राजयोग की साधना जितनी ज्यादा है उनकी पवित्रता का लेवल उतना ही ऊंचा उठ गया है।
बहुत सुंदर व्रता जी, लगातार हम इस पवित्रता और ब्रह्मचर्य के विषय पर चर्चा कर रहे हैं और बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं उनकी मिलीजुली प्रतिक्रिया अब तक आ रही है। तो मैं चाहूंगा कि एक संदेश आप ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से इस मंच से हमारे सभी दर्शकों को दें कि वर्तमान समय की जो मांग है वो पवित्रता के लिए और समाज के लिए क्या है।
बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। एक समय था कि स्वामी विवेकानंद ने युवकों का आह्वान किया था
जी।
एक समय था कि महात्मा गांधी ने आह्वान किया था, आओ अपने देश को स्वतंत्र कराएं। और अब वो समय आ गया है जब स्वयं भगवान हम सबका आह्वान कर रहे हैं और वो इन शब्दों में कर रहे हैं, हे मेरी देवकुल की आत्माओं, अब मेरे पास आ जाओ। तुमने अपवित्रता का विषय वासनाओं का भोग करके तो देख लिया, हजारों वर्ष तुमने इस जीवन में व्यतीत किए लेकिन तुमने अपना सब कुछ गंवा दिया, राज भाग्य गंवा दिया, सुख शांति गंवा दी, अपना पवित्रता निरोग काया समृद्धि सब गंवा दी, अब तुम्हें पवित्र बनना है। तो मैं अपने विशेषकर युवा साथियों से और बड़ों से भी कहूंगा, अब भगवान तुम्हारा आह्वान कर रहा है, अब तुम्हारी जरूरत भगवान को पड़ी है, जन्म जन्म तुमने उसको बुलाया था, अब उसने तुम्हारी सुनवाई कर दी है और वो तुम्हारी बातें सुनकर इस धरा पर आ गया है, अब वो तुम्हें बुला रहा है, हे मेरे प्यारे वत्सो, अब आ जाओ मेरे पास और अपने जीवन को पवित्र बनाकर देव कुल में सर्वोच्च पद प्राप्त करने के अधिकारी बनो। और अगर तुम पवित्र बनोगे तो तुम्हारी पवित्रता के वाइब्रेशन से ये प्रकृति भी पवित्र हो जाएगी, अगर तुम पवित्र बनोगे तो पवित्र जीवन के द्वारा पवित्र वाइब्रेशंस के द्वारा संसार की ये सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। विशेष रूप से आजकल जो समस्याएं ज्वलंत रूप लेकर एक राक्षस का रूप लेकर हमारे सामने खड़ी हैं वो लोप आज हो जाएंगी। तो मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे सभी दर्शक, हमारे सभी युवक जिनके अंदर प्योरिटी के बीज बहुत स्ट्रांगली पड़े हुए हैं वो पवित्र परमात्मा के इस आह्वान पर ध्यान देंगे और परमात्मा की बात सुनकर अपने जीवन को पवित्र बनाकर इस भारत को देव भूमि में फिर से परिवर्तित करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर भारत को स्वर्ग बनाएं, इसको फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करें ताकि संसार भारत की महानताओं के आगे नतमस्तक हो जाए।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी, आपने पवित्रता के विषय को इतना सुंदर ढंग से हमारे दर्शकों के सामने रखा और अभी जो आपने आह्वान किया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत देश के सभी युवा और सभी वर्ग इस अभियान के साथ जुड़ेंगे, इस क्रांति के साथ जुड़ेंगे और वो दिन दूर नहीं जैसा आप कह रहे हैं कि हमारा देश पुनः सोने की चिड़िया, पुनः राम राज्य बनेगा, पुनः एक आध्यात्मिक गुरु के, धर्म गुरु के पद पर स्थापित हो जाएगा। तो भ्राता जी, आपने जो भी बातें हमारे दर्शकों के साथ शेयर की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, जब देश पर तंत्र था तब किसी ने आह्वान किया था, हमारे नेताओं ने आह्वान किया था कि आज देश की बलि वेदी पर शीश चढ़ाने कौन चलेगा, आज तिरंगा ओढ़ मृत्यु को गले लगाने कौन चलेगा। तो अनेक युवा, अनेक लोग ये कहते थे हम चलेंगे, हम चलेंगे, हम चलेंगे। ये एक जोश था, एक उमंग था और इसी जोश और इसी उमंग ने पूरे देश को स्वतंत्र कराया। आज पुनः जैसे भ्राता जी ने आह्वान किया है, हम सब युवाओं को और साथ ही सभी को इस अभियान, इस क्रांति के साथ जुड़ने की आवश्यकता है ताकि पवित्रता के बल से, ब्रह्मचर्य के बल से हम पुनः राम राज्य की स्थापना कर सकें, अपने देश को पुनः स्वर्ग बना सकें। इस विषय पर बहुत गहराई से चिंतन अवश्य कीजिएगा और साथ ही अपने जीवन में श्रेष्ठता लाते हुए समाज को और देश को श्रेष्ठता की ओर ले चलिएगा। यही हमारी शुभकामना है, मंगल कामना है। नमस्कार।